जय, सीता मैया की जय, यमुना मैया की जय, श्री श्री राधा गोकुलम भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय, गौर प्रेमानंद
Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha. Baladev Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupad 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 Jaya Prabhupad Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajaka Acharya Shtotra Sat His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaurnitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadramai Ki Jai Nitai Gaura Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्नितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 40। अज्ञः च अश्रद्धानः च संशय आत्मा विनश्यति न अयम् लोकः अस्ति न परः सुखम् संशय आत्मनः। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। बोलिए। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति लोकोस्ति न परो संशयात्मनः। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। माताजी। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः अज्ञः मूर्ख जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है च तथा अश्रद्धानः शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन च भी संशय शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिर जाता है न अयम इस लोकः जगत में अस्ति है न तो परः अगले जीवन में न नहीं सुखम सुख संशय संशयग्रस्त आत्मनः व्यक्ति के लिए श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में नहीं परलोक में कोई सुख है तात्पर्य भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है जो लोग पशुतुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनका उनकी पूजा करते हैं ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता वे नीचे गिरते हैं उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे अनुवाद को दोहराइए किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में नहीं परलोक में कोई सुख है सुख ज्ञान पर निर्भर होता है क्योंकि सुख क्या चीज है और क्या नहीं है पहले ये जान लेना चाहिए। यदि हम सुख को जानते ही नहीं हैं, सुख की परिभाषा क्या है, सुख की पहचान क्या है, तो हम गलत चीज को सुख समझ बैठेंगे और उस गलत चीज के पीछे पीछे भागते रहेंगे और फिर सुख कहां से मिलेगा। तो सुख क्या है और क्या नहीं है दोनों जानना आवश्यक है। और केवल लगभग सुख ऐसे चीज है वो भी काफी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि एक बार एक व्यक्ति था, वो जानना चाहता था कि गन्ना ये क्या चीज है। तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे समझाने का प्रयास कर रहा था कि देखो ये गन्ना है, ये बांस की तरह होता है, बांबू की तरह। तो जाके जंगल में ढूंढने लगा, कहीं उसे बांस की तरह कोई पौधा मिला तो उसे उठाया, उसे चबाने लगा, सोचने लगा कि इससे कुछ मीठा स्वाद मिलना चाहिए, लेकिन कहां से मिलता। केवल एक साधारण ऊपरी ज्ञान रहने से काम नहीं चलेगा। इतना ही कहना कि गन्ना बांस की तरह दिखता है, इतने ज्ञान से हम यदि आगे गन्ने को ढूंढने जाएं तो गन्ना नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक उसी तरह से सुख के प्रति पूर्णतया अज्ञान की बात तो दूर रही, लेकिन केवल लगभग ज्ञान सुख के बारे में हो उतना भी नहीं चलेगा। पूरा स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए ताकि हमारे संशय दूर हो जाएं, मार्गदर्शन हमें सही तरह से मिल जाए और फिर ये भी हम जान लें कि सुख सही सही क्या चीज है। उसके बाद भी मामला समाप्त नहीं होता है, फिर हमें जानना चाहिए कि उस सुख की प्राप्ति कैसे की जाए, सही रास्ता क्या है उस सुख को प्राप्त करने के लिए। यदि लक्ष्य का ज्ञान हो परंतु लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए उसका ज्ञान न हो तो फिर क्या लाभ। हम यहां वहां सही चीज के लिए गलत दिशा में ढूंढते रहेंगे, फिर भी कोई लाभ नहीं है। जी आज आपने वो चुटकुला तो सुना ही होगा कि एक बार एक व्यक्ति किसी एक दीप के खंभे के नीचे सड़क पर कुछ ढूंढ रहा था। तो किसी व्यक्ति ने आके पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, मेरी चाबी खो गई तो मैं चाबी ढूंढ रहा हूं। तो चाबी कहां गिरी थी? चाबी वहां गिरी थी। अरे चाबी वहां गिरी थी तो यहां क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि वहां अंधकार है, यहां उजाला है, वहां तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो चीज तो सही थी जिसको वो ढूंढ रहा था, चाबी, लेकिन गलत जगह में ढूंढ रहा था। ठीक उसी तरह से हमें ज्ञान हो भी कि सुख क्या चीज है परंतु उसे कैसे प्राप्त किया जाए, यदि इसके बारे में स्पष्ट ज्ञान न हो तो फिर भी हमारा काम बनेगा नहीं, सुख को नहीं पाएंगे हम। तो यहां भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिनको सुख पाना है उनको सही ज्ञान पाना चाहिए शास्त्रों से, और शास्त्रों में जो दिया हुआ ज्ञान है उनको समझाने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि शास्त्रों का ज्ञान हमें आचार्यों से प्राप्त करना चाहिए जो परंपरा में आ रहे हैं, गुरुजनों से जो कि परंपरा से जुड़े हुए हैं। इस तरह से ज्ञान यदि हम प्राप्त करेंगे तो सुख क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है इसका स्पष्ट ज्ञान हमें मिल पाएगा। परंतु जिनको शास्त्रों में ही विश्वास नहीं है तो फिर आगे चल के आचार्यों में क्या विश्वास रखेंगे, गुरुजनों में क्या विश्वास रखेंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, न अयम लोकः अस्ति न परः, इस लोक में वो सुख नहीं प्राप्त करेंगे और न ही परलोक में प्राप्त करेंगे। न सुखम संशयात्मनः, तो ऐसे संशयात्मा को न इस लोक में न परलोक में न इस जन्म में न किसी पुनर्जन्म में सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो मूल शास्त्र ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का स्रोत है, वो है शास्त्र, और शास्त्र के अनुसार हमें जीना चाहिए। शास्त्र शब्द शस धातु से आता है, संस्कृत व्याकरण के दृष्टि से देखा जाए तो, अर्थात संयम करना, यह शस है, जैसे शासन है, शस्त्र है जिसके द्वारा अन्यों को शासित किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो शास्त्र वो है जिनमें ऐसे आदेश दिए हुए हैं जिनको कि हमें, जिनका पालन हमें करना चाहिए, जिनके अधीन हमें होना चाहिए, इसलिए वो शास्त्र कहलाते हैं। तो मूल ज्ञान शास्त्रों में पाया जाता है, परंतु शास्त्र विविध प्रकार के होते हैं, तरह तरह के विधियां निषेध उनमें कहे गए हैं, अलग अलग परिस्थितियों के लिए, अलग अलग समय के लिए, अलग अलग लोगों के लिए शास्त्रों के आदेश हैं। तो कौन से शास्त्रों का पालन हमें करना चाहिए, या शास्त्रों के कौन से आदेशों का पालन करना चाहिए, कौन से आदेशों का नहीं पालन करना चाहिए, या जिनका पालन करना इस समय उचित नहीं है, ये सब जानने के लिए तो हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि हमें ये सब समझा सके। और केवल तर्क से भी नहीं हो पाएगा, इसलिए कहा गया है तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नसा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। केवल तर्क से हम ज्ञान को नहीं जान पाएंगे, और यदि शास्त्रों के आधार पर भी हम तर्क कर रहे हैं, केवल तर्क करते ही रह जाएंगे। हम सोचेंगे, हम तरह तरह के शास्त्र पढ़ेंगे, हम पंडित बन जाएंगे, फिर शास्त्रों का सार समझ पाएंगे, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि एक पंडित ऐसे कहेगा, दूसरा पंडित कोई दूसरी बात कहेगा, इस तरह से भिन्न मत हो जाएंगे, और साधारण व्यक्ति हम जैसे वो कहीं कभी नहीं रह जाएंगे कि ये सही है या वो सही है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो ये न गतः सपन्था। धर्म या ज्ञान के जो सूक्ष्म बातें हैं वो किसी यहां वहां ऐसे किसी साधारण व्यक्ति से के पास से नहीं मिल सकते, वो एक महाजन या महात्मा व्यक्ति के हृदय में पाए जाते हैं। इसलिए ऐसे महाजनों के पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी सिखलाते हैं कि सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो कि सुख के लिए और समसिद्धि के लिए आवश्यक है, हमें केवल शास्त्र पर्याप्त नहीं है, शास्त्रों के साथ साथ हमें गुरु चाहिए। और केवल शास्त्र और गुरु इतने काफी नहीं है, हमें साधु भी चाहिए, अर्थात जो परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्य रहे हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। तो ज्ञान की एक तिपाई है, ये तिपाई मतलब एक मेज है समझ लीजिए, जिसके तीन पैर होते हैं, इसको तिपाई कहते हैं, अंग्रेजी में ट्राइपॉड कहते हैं, तीन पहियों वाला मेज। तो ज्ञान या आध्यात्मिक जीवन इस तिपाई पर खड़ा है, गुरु साधु शास्त्र, इन तीनों में से किसी एक को भी आप निकाल लेंगे तो ज्ञान सही नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो जीवन की सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें कोई न तो गुरु चाहिए, न साधु चाहिए, न शास्त्र चाहिए, केवल अपने बल, अपने बौद्धिक बल के आधार पर, हमारे मानसिक चिंतन के बल पर हम सत्य को ढूंढ पाएंगे। परंतु ये तो संभव है ही नहीं, इतना तो निश्चित है, व्यक्ति दुनिया में कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, परंतु उसकी बुद्धि सीमित होगी, उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, त्रुटियां करने की एक आदत होती है, धोखा देने की आदत होती है, भ्रमित होने की प्रवृत्ति होती है, तो ऐसे अपूर्ण अवस्था में कोई भी व्यक्ति जितना भी बुद्धिमान वो क्यों ना हो, वो सही ज्ञान को ढूंढ नहीं निकाल पाएगा। मानसिक चिंतन पर आधारित जो ज्ञान का आविष्कार होता है, तथाकथित आविष्कार, संशोधन आदि के द्वारा, वो कभी भी सही ज्ञान नहीं हो सकता है। कोई ना कोई दोष अवश्य रहेगा उसमें। और हम देखते हैं कि साधारण ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी हमें कोई एक अध्यापक की आवश्यकता होती है, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये एक बहुत प्रारंभिक बात है आध्यात्मिक ज्ञान में। भगवद गीता में भी ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, कि हमें एक सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए जो कि तत्वदर्शी हैं, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और नम्रता पूर्वक प्रश्न करने चाहिए आध्यात्मिक जीवन से संबंधित, तो ऐसे हमें ज्ञान मिल सकता है। ठीक है, तो कोई कहेंगे ठीक है, मैं कबूल करता हूं कि अपने बौद्धिक बल के आधार पर केवल मैं ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, एक गुरु मुझे चाहिए। तो ठीक है, मैं किसी गुरु को ढूंढ लूंगा, लेकिन फिर ये साधु और शास्त्र मुझे नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में गुरु कौन होते हैं, फिर ये प्रश्न आता है कि यदि हमने किसी एक व्यक्ति को गुरु चुन लिया और वो गुरु कहते हैं कि ना मैं शास्त्रों के ऊपर कुछ बोलूंगा, ना मेरे पीछे कोई परंपरा है, बस मेरे मन से जो मुझे ठीक लगता है वही सत्य है, वो उसी बात को मैं दोहराऊंगा, तो ऐसे गुरु तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कई गुरु तथा कथित गुरु ऐसे होते हैं जो कि शास्त्रों को नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों को तो तुरंत हमें नकार देना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे शिष्य के बराबर ही है और उस शिष्य के लिए गुरु न होने के बराबर है। ऐसे एक दार्शनिक रहे भारत में और काफी प्रसिद्ध भी हुए थे वो, तो उनका कथन ये हमेशा होता था, मैं शास्त्र में विश्वास नहीं करता हूं और न ही मैं गुरुओं में विश्वास करता हूं। और उनके अनुयायी अनेक हुए तो कहने लगे कि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप ही स्वयं अपने गुरु हैं, अपना पथ आपको ही ढूंढ के निकालना है। परंतु देखिए, ऐसे बोलकर वो एक गुरु का पद ही स्वीकार कर रहे थे ना, और उनकी बात मानकर ये लोग उनको गुरु ही तो मान रहे थे ना। तो ये कहकर, उनको ये आदेश देकर कि किसी को गुरु नहीं स्वीकार करो, वो उनको गुरु स्वीकार कर रहे थे, तो अपने ही बात का खंडन वो अपने वचनों के द्वारा कर रहे थे कि वो स्वयं कह रहे हैं गुरु की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो गुरु बन के ही तो बात कर रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं कि गुरु मत ढूंढो। तो इस तरह से समाज में लोग पथ भ्रष्ट होते जा रहे हैं, भ्रमित होते जा रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति ये भी सोचे कि ठीक है, मैं शास्त्रों का पालन करता हूं या शास्त्रों में विश्वास रखता हूं, परंतु जैसे यहां श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, ये विश्वास गहरा नहीं है, सच्चा नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। यूं ही बस कहने से कि हम शास्त्रों में विश्वास करते हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। शास्त्रों को कैसे समझना चाहिए वो भी आवश्यक है। यदि हमने केवल नाम के लिए शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा रख ली और अपने मनमाने ढंग से शास्त्रों के ऊपर टीका करना शुरू कर दिया, तो फिर ऐसे शास्त्रों के ऊपर विश्वास तो ज्यादा मायने नहीं रखता, तो ऐसे व्यक्ति से भी हमें श्रवण नहीं करना चाहिए। यदि कोई गुरु कहे कि मैं शास्त्रों की बात आपको सुनाऊंगा, परंतु मेरे मनमाने ढंग से जो मुझे ठीक लगता है वो वैसे ही करूंगा, मायापुर में हम इस बात को कह रहे थे कि एक बार हम जब नए ब्रह्मचारी थे तो हम बंबई में किसी काम से गए थे, शाम को लौट रहे थे तो वहां एक बहुत बड़ा पंडाल था और उस पंडाल में बाहर ऐसे घोषणा थी, ऐसे लिखा था, संकेत था कि फलाना फलाना स्वामी अब भगवद गीता के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। और हमने इनका नाम तो अच्छी तरह से सुना था और हम जानते थे कि ये तो मायावादी सन्यासी हैं और ये भक्ति की बात तो नहीं करेंगे और ऐसे मायावाद का खंडन महाप्रभु ने किया है, वैष्णव आचार्यों ने किया है और ऐसे सख्त मना है मायावादी भाष्य सुनना। महाप्रभु ने कहा है मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। परंतु हम जानना चाहते थे कि ये लोग वास्तव में बोलते क्या है। एक जिज्ञासा हुई तो चलो जाके सुनते हैं ताकि एक साक्षात्कार हो जाए और प्रचार के लिए भी अच्छा होगा। तो हम अंदर गए, पंडाल काफी अच्छी तरह से सजाया हुआ था, अनेक लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे, बहुत धनी लोग वहां थे, केवल उस श्रेणी के लोगों को वो प्रचार करते थे। तो जैसे ही हम अंदर आए प्रवचन तो शुरू हो चुका था और ये सभी लोग बैठे हुए थे, अकेले हम चलने वाले व्यक्ति थे, चल रहे थे, पीछे से आए, पीछे से अंदर आए तो चलते हुए आ रहे थे, ढूंढ रहे थे कोई कुर्सी बैठने के लिए मिले। तो उन्होंने देख लिया हमें और गहरे वस्त्र थे और तिलक था तो समझ लिया कि ये कोई हरे कृष्ण वाला है। अब हुआ ये कि उसी समय दैव से वो भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक पर बोल रहे थे, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सतत मेरे बारे में कीर्तन करना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, और ऐसे दृढ़ता पूर्वक मेरी सेवा में लगने चाहिए। ऐसे जो महात्मा गण होते हैं वो इस तरह से करते हैं, सतत मेरी उपासना करते हैं, श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं। स्पष्ट है, साधारण है, यदि यथारूप से हमें ले लिया तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो हमें देखकर फिर वो कहने लगे, सततम कीर्तयन्तो माम का मतलब ये नहीं है कि हमें केवल दिन भर हरे कृष्ण हरे राम गाना चाहिए और फिर वहां बैठे बैठे वो हरे कृष्ण भक्त की नकल करने लगे। ऐसे नकल हम व्यासासन पर बैठ के नहीं कर सकते, व्यासासन का मान रखना है। तो वो नकल करने लगे, काफी वृद्ध थे, हम आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी ताकत उनको कहां इस तरह से नकल करने के लिए। तो खैर कर रहे थे, बड़े जोरदार नकल कर दी थोड़े समय के लिए और फिर अपनी व्याख्या को व्याख्या शुरू कर दी कि वास्तव में सततम कीर्तयन्तो माम का क्या मतलब है। बस 2 मिनट सुने और सोचा कि इतना निर्वाण जो है कक्ष इतना ठीक नहीं हमारे लिए, बहुत है, पर्याप्त हो गया। अभी मानसिक चिंतन से तरह तरह के वो मतलब बता रहे थे तो वहां से हम निकल गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई केवल भगवद गीता के ऊपर भी कुछ कहे और वो कहने लगे कि मुझे भगवद गीता में पूर्ण विश्वास है परंतु मनमाने ढंग से गीता के ऊपर कुछ टीका करने लगे तो ऐसे गुरु को स्वीकार करने से भी हमारे लिए कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको उनके कोई गुरु थे या नहीं पता नहीं, लेकिन थे भी तो निश्चित ही उनकी कोई परंपरा तो थी नहीं। तो कोई गुरु यदि कहे कि मैं वैदिक शास्त्रों को स्वीकार करता हूं तो गुरु और शास्त्र केवल इतने से काम नहीं चलेगा, परंपरा भी चाहिए। दूसरे शब्दों में उनके गुरु चाहिए और उनके गुरु को भी कोई गुरु हुए होने चाहिए और इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा हुई होनी चाहिए। और यदि कोई गुरु कहे कि मेरी भी परंपरा है तो अगला प्रश्न ये होना चाहिए कि आपकी पूर्व परंपरा कहां से शुरू होती है। वो कहेंगे 500 साल पहले से शुरू हुई, 300 साल पहले, 200 साल पहले, फिर नहीं, काम नहीं चलेगा। सही प्रामाणिक जो परंपरा है वो भगवान कृष्ण से शुरू होनी चाहिए, अखंडित परंपरा होनी चाहिए, जो हम तक आनी चाहिए हमारे गुरु के द्वारा। तब हम कह सकते हैं कि हमारे गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो इसे कहते हैं साधु। केवल गुरु हैं, वो शास्त्र को भी मानते हैं, परंतु साधु नहीं है, अर्थात सही परंपरा नहीं है जो कृष्ण तक जाती है। क्योंकि ये बात निकलेगी कि यदि ऐसे तथाकथित गुरु हैं तो उन्होंने ज्ञान पाया कहां से है। ठीक है, वो कहेंगे मेरे गुरु से, तो उन्होंने ज्ञान कहां से प्राप्त किया, मेरे उनके गुरु से। ऐसे पीछे जाते जाते पूर्ण विराम कहां होगा। यदि वो कृष्ण तक नहीं पहुंचती है वो श्रृंखला, तब उस परंपरा को हम स्वीकार नहीं कर सकते, उन्हें प्रामाणिक साधु नहीं मान सकते। साधु ये शब्द पूर्ववर्ती आचार्यों को भी काफी संबोधन होता है, और साथ साथ समकालीन जो भी आचार्य हैं उनका भी संबोधन इस शब्द से होता है। तो इस तरह से गुरु स्वीकार करना आवश्यक है, परंतु गुरु को चाहिए कि वो शास्त्रों को स्वीकार करे, फिर भी इतना पर्याप्त नहीं है। गुरु का संबंध एक परंपरा से, प्रामाणिक परंपरा से होना भी आवश्यक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे कई हास्यपद कहानियां सुनाया करते थे, सिखाने के लिए कैसे गुरुजनों की आवश्यकता है, कैसे साधुओं की आवश्यकता है, परंपरा की आवश्यकता है, शास्त्रों की आवश्यकता है। केवल एक दो ऐसे कहानियां मैं सुनाता हूं आपको। उपाख्याने उपदेश नाम के ग्रंथ में उन्होंने इन कहानियों को कहा है कि हुआ ये कि एक बार एक राजा के महल में राजकुमार कई थे, तो राजकुमारों के मनोरंजन के लिए राजा ने अनेक बंदरों को रखा था, क्योंकि बंदरों को देखते हैं तो हंसी आती है ना, तो मनोरंजन होता है। तो राजकुमारों के लिए बंदर वहां रखे गए थे, और वो अपने कार्य करते करते राजकुमारों के लिए फिर मनोरंजन हो जाता था। अब हुआ ये कि राजकुमारों के मनोरंजन के लिए कोई भेड़े भी वहां पे रखे गए थे। मराठी में भेड़े को क्या कहते हैं, शीप, हाँ हाँ, मेंढी, ठीक है, मेंढी। तो जो ऊन, जिनके शरीर से ऊन मिलता है, भेड़ कहते हैं हिंदी। तो ये राजकुमार जो है छोटे बच्चे थे, तो इन भेड़ों के ऊपर बैठ जाते थे और उनको चलाए करते थे मनोरंजन के लिए आंगन में ही। अब इन बंदरों के बीच में एक बहुत बुजुर्ग बंदर थे जो बड़े बुद्धिमान थे, शास्त्रों को जानते थे, नीति शास्त्र भी जानते थे। तो अन्य बंदरों को बुलाकर कभी कभी वो नीति शास्त्र सुनाए करते थे, कभी चाणक्य, कभी बृहस्पति इत्यादि, इन सब के वचनों को जानते थे। तो खैर समय बीत गया, लेकिन ये वृद्ध बंदर ने देखा कि यहां जो भेड़े हैं, ये इनमें से एक भेड़ है जो कि हमेशा महल के रसोई घर में जाता है, क्यों, बहुत खाने की इच्छा है इसकी, बहुत लोभी है अच्छे भोजन के लिए, और वहां जो रसोइया हैं वो उसको बार बार छड़ी आदि से जो भी हाथ में मिला उसे पकड़ के मारते थे, भगाते थे रसोई से, रसोई घर से। परंतु फिर भी अगले दिन ये भेड़ वहां फिर से चले जाता था, क्योंकि जीभ का जो आकर्षण है वो बहुत तीव्र होता है, स्वादिष्ट व्यंजन जहां मिले वहां जाने की इच्छा होती है। तो फिर ये बूढ़ा बंदर सोचने लगा कि आगे चल के इससे समस्या होगी। देखिए कितनी गहरी उसकी विचार थे, वो सोच रहा था कि ये भेड़ जो है ये बार बार जाता है और हैरान करता है रसोइयों को, और वो इतने हैरान हो जाते हैं कि गुस्से में जो आंखों के सामने देखे उसे पकड़ के उससे वो प्रहार करते हैं उस भेड़े के ऊपर। तो कभी ऐसे होगा कि चूल्हे में जो लकड़ी जल रही है उसको उठाएंगे और जलते हुई लकड़ी को लेकर उसके ऊपर फेंक देंगे और उसके शरीर के ऊपर जो ऊन है वो जलने लगेगा और जलते हुए शरीर को लेकर फिर वो भेड़ भागेगा और देखेगा कि यहाँ सूखा घास कहाँ है जिसमें मैं लोट जाऊं ताकि ये अग्नि मिट जाए। और वहां घोड़े के जो स्थान थे अश्वशाला, तो उसमें घास सूखा हुआ रहता है तो उसमें जाके वो लोटेगा, घास में आग लग जाएगी, आग लगेगी तो घोड़े जल जाएंगे, घोड़े के चमड़े जल जाएंगे। तो राजा फिर है जो वैद्य को बुलाएगा जो अश्व चिकित्सा में या पशु चिकित्सा में प्रवीण है। तो ये बूढ़े बंदर को ज्ञान था कि पशु चिकित्सक एक प्राचीन काल में थे जिनका नाम था सलिहोत्र, और उसने कहा है कि घोड़ों के चमड़ों पे जब जलन होती है तो उसके लिए जो सबसे अच्छी दवाई है वो है बंदरों की चर्बी। तो इसलिए फिर वो राजा आदेश देगा इस वैद्य के कहने पर, बंदरों की हत्या कर दो और फिर जो चर्बी मिल जाए फिर उससे उपचार कर लो घोड़ों की। तो ये बूढ़ा व्यक्ति सोच रहा था कि एक दिन ऐसे घटना होने वाली है क्योंकि ये जो भेड़ है ये बार बार इस रसोई घर में जाता है। तो उसने सारे जवान बंदरों को बुलाया और कहा कि देखो ये बड़ा खतरनाक स्थान है हमारे लिए, हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये एक भेड़ जो है ये बहुत खतरनाक है और इतना लोभी है भोजन के लिए, रोज जाता है और इस तरह से समस्या हो सकती है और होने वाला है एक दिन, और उससे मैं राजा आदेश देगा हम सबको, हमारे हम सब की मृत्यु के लिए आदेश दे देगा। अब यहाँ इतना अच्छा भोजन मिल रहा था बंदरों को, इतने ऐश कर रहे थे सारे बंदर, वो सब हंसने लगे बूढ़े बंदर के, सब बूढ़ा हो गया है इसलिए ऐसे बोल रहा है, अरे यहाँ रह के ऐश करना चाहिए ना, कहाँ जंगल में जाके रूखे सूखे कंदमूल खाओगे, ना कुछ वो झूठे बेर आदि खाओगे, कड़वे बेर होते हैं कभी खट्टे होते हैं, यहाँ इतना अच्छा भोजन मिलता है, इसको छोड़ के कहाँ हम वहां जंगल में जाएंगे, हम नहीं आएंगे, आपको जाना है तो आप चले जाओ। तो बेचारे दुखी होकर वो अकेले चले गए, सोचे अपनी जान तो बतानी चाहिए, इनको तो हमने कहना था तो कह दिया। और थोड़े दिनों बाद जिस बात का डर उस बूढ़े बंदर को था वैसे ही हुआ, बिल्कुल वैसे का वैसे हुआ। और फिर राजा ने आदेश दिया बंदरों को पकड़ो मार डालो और उनकी चर्बी से दवाई बनाओ और घोड़ों की चमड़ी पे लगा दो। तो सारे बंदरों की मृत्यु हो गई सिवाय उस एक बुद्धिमान बूढ़े बंदर की। तो श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि उसी तरह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब पता है, हम अपना जीवन कैसे चलाना चाहते हैं वो हमें पता है, हम चलाएंगे क्या, गुरुजनों की क्या आवश्यकता है, साधुओं की क्या आवश्यकता है, शास्त्रों की क्या आवश्यकता है, अपने मनमाने ढंग से चलाएंगे ऐसे हमें ठीक लगता है वैसे चलाएंगे। और जब कोई बुजुर्ग होते हैं कोई आध्यात्मिक ज्ञान बताना चाहते हैं वो सोचते नहीं नहीं इस ज्ञान की क्या जरूरत है, हमें पता है ना सही क्या है, हमारे लिए उचित क्या है, हम जानते हैं इतने पढ़े लिखे हैं बुद्धिमान है। तो इस तरह से लोग अपने ही ऊपर हानि कराते हैं और विनाश के पथ पर चलते हैं क्योंकि वो गुरु साधु शास्त्र को मानते नहीं है। संसार में ऐसे ही तो देखा जा रहा है, नारकीय अवस्था की ओर सारे नेता ले जा रहे हैं समाज को क्योंकि उनको भी कोई ज्ञान नहीं है, कोई गुरु साधु शास्त्रों को मानते नहीं है। और एक बात श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताए करते थे कि कैसे तथाकथित पंडित लोग होते भी हैं और उनके हृदय में या वो कहने के लिए कहते हैं कि शास्त्र में विश्वास है, परंतु वास्तव में शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उसका सही तात्पर्य नहीं जानते हैं। एक बार हुआ ये कि एक ब्राह्मण एक गांव में रहा करता था। वो वास्तव में बहुत प्रामाणिक पंडित था, विद्वान था, परंतु जैसे जैसे आगे पीढ़ियां बढ़ती गईं, तो उसके जो वंशज थे वो सही पंडित नहीं निकले। धीरे 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 से वो विद्या के पद से भ्रष्ट हो गए, और अनेक पीढ़ियों बाद उनका परिवार तो बहुत फैल गया, वंशजों के का बड़ा परिवार हो गया, बहुत सारे लोग थे गांव में उनके परिवार के, और उनको पंडित सभी लोग मानते थे, क्योंकि वो ऐसे एक पेश आते थे गांव वालों के सामने जो कि बेचारे अनपढ़ थे, कि हम लोग बहुत बड़े पंडित हैं, तो सभी लोग उनको बहुत विद्वान मानते थे। अंधों के राज्य में जो काना होता है वो भी विद्वान बड़ा माना जाता है। तो इस तरह से ऐसे गांव में उन लोगों को बहुत बड़ा विद्वान मानते थे, और उनमें से एक व्यक्ति था जिनको अन्य लोग सब दादा ठाकुर कह के पुकारते थे। ऐसे कहा जाता था कि उन पंडितों के समाज में ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, परंतु न उस तथाकथित पंडितों के समाज में किसी को कोई ज्ञान था और न दादा ठाकुर को कुछ पता था, लेकिन सभी लोग दादा ठाकुर बड़े पंडित हैं कहते थे। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव में रहा करता था। उसने सोचा कि ये सारे तथाकथित पंडित इनको कुछ नहीं पता है, और गांव वाले बेचारे मासूम हैं, और इसलिए गुमराह कर रहे हैं ये पंडित लोग उनको, तो मुझे क्या करना चाहिए, गांव के हित के लिए एक सच्चे विद्वान को बुलाना चाहिए गांव में। तो सच्चा पंडित जब आ जाएगा तो इनका पोल खुल जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि सही विद्वान कौन है और कौन नहीं है। तो विद्वान बेचारे आ गए, उनको क्या पता था कि यहां क्या होना है आगे। तो एक विद्वत गोष्ठी आयोजित की गई, तो उसमें वो विद्वान आए, वो प्रामाणिक सही विद्वान थे। तो अभी ये सारे पंडितों के का परिवार था, वो चिंतित हो गया कि अब क्या हो जाएगा, अब ये सही विद्वान के सामने आएंगे तो फिर हमारा पोल खुल जाएगा, सत्य क्या है इसका खुलासा हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए। तो दादा ठाकुर के पास गए। दादा ठाकुर ने कोई बात नहीं, मैं इसकी उसको चुनौती दूंगा और उसके साथ में बात करके उसे हरा दूंगा। तो फिर वो विद्वान आए। अब जब दो विद्वान मिलते हैं, जब वाद की स्पर्धा आदि हुआ करती थी, तो प्राचीन काल में सबसे पहले अपना परिचय देना होता है। तो विद्वान ने अपना परिचय दे दिया, और फिर दादा ठाकुर बैठे थे मंच के ऊपर, तो उनसे उन्होंने पूछा, कस्त्वस कह त्वम, मतलब आप कौन हैं, मतलब आपका परिचय क्या है। तो जब एक सामने वालों को पूछना चाहते हैं कि आपका परिचय क्या है, कस्त्वस कहते हैं। अब दादा ठाकुर को क्या पता ये कस्त्वस क्या चीज होती है, ये कोई पेड़ है या पत्थर है, किताब है, क्या है, उनको क्या पता है जलेबी का भी दूसरा नाम है, क्या पता कस्त्वस क्या चीज है। लेकिन इतना है कि वो जानता था क ख ग घ ङ ये है। तो उसने सोचा, अच्छा ये संस्कृत से बात कर रहा है, तो मैं भी मेरा पांडित्य का प्रदर्शन करता हूँ, इसने कस्त्वस कहा है ना, तो मैं भी कोई कम नहीं, खस्त्वस गस्त्वस खस्त्वस ऐसे करके कहने लगा, चस्त्वस छस्त्वस थस्त्वस तस्त्वस, ऐसे जितने भी अक्षर है उनसे शुरू होकर ये कस्त्वस खस्त्वस तस्त्वस करने लगा। और बड़े जैसे रेलगाड़ी का इंजन होता है ना, इस तरह से धुआंधार बोलते रहा। और जो सही विद्वान आया था, ये तो चकाचौंध, ये क्या चल रहा है, सोचते ये लोग सब मूर्ख हैं, क्या पंडित है ये, अरे मेरा तो पूरा अपमान हो जाएगा इनके साथ बैठ के मैं कोई वाद करूं, कोई तर्क करूं कुछ, ये विद्वत गोष्ठी कही, ये लोग तो मूर्ख है सब, यहां से निकल जाना ही अच्छा है मेरे लिए। तो चुपचाप उठ के निकल गए, और फिर सारे वो पंडित समाज के लोग जो थे वहां पर, वो सब कहने लगे, देखो हमारे दादा ठाकुर कितने बुद्धिमान है, कितने बड़े विद्वान है, ऐसे धुआंधार वाद किया कि देखो वो सामने वाला आदमी भाग के चला गया डर के मारे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ठीक उसी तरह से समाज में बहुत तथा कथित विद्वान होते हैं और वो वैष्णव के सामने आके कहते हैं कि तुम कौन से वैष्णव हो, और वैष्णव पूछते हैं कस्त्वस आपका परिचय क्या, आपने कहा ज्ञान कहां से प्राप्त किया। तो ऐसे कोई ना कोई धुआंधार अपने मानसिक चिंतन के अनुसार मन माने ढंग से कुछ भी बोलने लगते हैं। हमारे मन में हमारे मत में तो सत्य ऐसे है, हमारे मत में सत्य वैसे है, और फिर वैष्णवों को वो निम्न समझते हैं, साधारण समझते हैं। अरे आप वैष्णव लोग क्या जानते हो, आप लोग केवल हरे कृष्ण हरे राम कहते हुए घूम रहे हो। परंतु वो नहीं जानते हैं कि वैष्णव धर्म जो है ये भी बहुत एक गहरे ज्ञान के ऊपर आधारित है, ये भी कोई साधारण भावुकता के ऊपर आधारित नहीं है जैसे कि गलत फहमी कई लोगों में है। इतने बड़े बड़े आचार्य रहे हैं जिन्होंने कि इस भक्ति के सिद्धांत को बहुत ही गहरे ज्ञान के बुनियाद के ऊपर आधारित किया है। तो इस तरह से संसार में लोग न तो सही गुरु जानते हैं क्या चीज है, न साधु क्या है वो जानते हैं, न शास्त्र क्या है वो जानते हैं। तो कई लोग केवल गुरु को जानते हैं, गुरु को मानते हैं, परंतु वो गुरु साधुओं को शास्त्रों को नहीं मानता, और मानते भी हैं तो जैसे हमने पहले कहा अपने गुरु और शास्त्र है, साधु नहीं है। और कोई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम गुरु को नहीं मानते, हम केवल साधुओं को मानते हैं। जैसे आजकल ऋत्विक सिद्धांत लोग करते हैं ना, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो बहुत ही अच्छा है। ये ऐसे कि हम साधु को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, गुरु को नहीं मानते। फिर और कोई लोग हैं जो कहते हैं हम केवल शास्त्र को मानते हैं, ना गुरु को मानते हैं ना साधु को मानते हैं, या हो सकता है साधुओं को मानते हैं पर गुरु को नहीं मानते। ऐसे भी कई धर्म हैं जो कहते हैं कि हमारी गुरु परंपरा यहीं पर समाप्त हो गई, उसके बाद जो है हम केवल ग्रंथ को ही मानते हैं, ग्रंथ ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए भगवान है सब है, तो हम भी ग्रंथ को पढ़ेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो अब हमारे समकालीन कोई गुरु होने की आवश्यकता नहीं है जो हमको ज्ञान समझा सकते हैं, परंतु इन तीनों की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि गुरु साधु और शास्त्र ये समांतर जो रेखाएं हैं, तीन समांतर रेखाओं के समान हैं जो चल रही हैं। और यदि हम एक ऐसे गाड़ी में बैठे हैं जिनके तीन पहिए इन तीन रेखाओं पे पहियों पर चक्कों पर चल रहे हैं तो हम भगवत धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। तीनों की आवश्यकता है। शास्त्र वो है जो कभी बदलता नहीं है, ये भगवान की वाणी होने के कारण परम सत्य है। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता का ज्ञान पहले कुछ और हुआ करता था, और कृष्ण के समय जब अर्जुन के समय कुछ और था, और आज कुछ बदलना चाहिए गीता के ज्ञान को, नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता जैसे शास्त्र होते हैं वो सदैव रहते हैं, उसके अंदर जिस सत्य का वर्णन होता है वो सत्य के सिद्धांत सदैव वैसे के वैसे रहते हैं, परिवर्तनशील ये ज्ञान नहीं होता है जैसे कि आधुनिक मानसिक चिंतन पर आधारित ज्ञान होता है। तो शास्त्र परम सत्य हैं और वो हमेशा रहेंगे। तो साधु कौन है, जो शास्त्रों को मानते हैं वो साधु हैं, शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर अपना जीवन बिताते हैं। तो गुरु कौन है, जो साधु और शास्त्र को मानते हैं और उनके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, बस ये है गुरु साधु शास्त्र। तो तीनों में से किसी एक को कैसे पहचानना चाहिए, प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं अन्य दो से। गुरु क्या है जानना है तो साधु और शास्त्र से समझो, शास्त्र कौन सा प्रामाणिक है कौन सा नहीं है ये जानना है तो गुरु और साधु से समझो, साधु कौन है समझना है तो गुरु और शास्त्र से समझो। तो इनका केंद्र बिंदु शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र से सब कुछ मिलता है। तो ऐसे गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों की आवश्यकता इस समाज में है। और यदि हम मनमाने ढंग से कुछ सोचेंगे कि तीनों में से मुझे तीनों ही नहीं चाहिए, या दो नहीं चाहिए, या एक नहीं चाहिए, फिर भी सही ज्ञान हमें नहीं मिलेगा। और जब सही ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर सही सुख नहीं मिलेगा। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चा सुख चाहता है, उसे इन तीनों को सही तरह से स्वीकार करना चाहिए, गुरु, साधु, शास्त्र। साधु, शास्त्र, गुरु, चित्ते ते को रिना कुर चित्ते ते क्या, नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि साधु, गुरु, शास्त्र, तीनों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे हमारे जीवन की सफलता हो सकती है। हरे कृष्णा। यहां रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई सूचनाएं हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। तो मनुष्य जीवन में सफलता अगर प्राप्त कर दी है तो ऐसे गुरु, साधु और शास्त्र का क्या महत्वपूर्ण स्थान है? ये ज्ञान देने के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे परम पूज्य भक्ति रसायन स्वामी महाराज का। तीन बार जोर से हरि बोल कहते हैं। साथ ही साथ हम स्वागत करना चाहें हम सभी भक्तों का जो आज पहली बार मंदिर में आए हैं। तो उनसे हम विनती करते हैं कि कुछ समय के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कृपया संकोच ना करें। आप सभी भक्तों का राधा गोपालानंद मंदिर में सहज स्वागत है और आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह आते रहेंगे तथा जो यहाँ पे नियमित तौर पे जो कार्यक्रम चलते हैं उनमें आप भाग लेंगे। तो नियमित आने वाले भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि तीन बार जोर से हरि बोल कहे इनका धन्यवाद। सप्ताह में हम एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाने जा रहे हैं। गुरुवार 5 तारीख को श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे 3 और 4 तारीख को, मंगलवार 3 तारीख और बुधवार 4 तारीख को शाम को गौर कथा का आयोजन कर रहे हैं। और यह गौर कथा परम पूज्य भक्ति रसायन स्वामी महाराज देंगे। यह कथा ठीक 7 बजे शुरू होगी। तो भक्तों से विनती है कि कृपया समय से पहले ही आ जाएं। और 5 तारीख यानी गुरुवार 5 तारीख को सुबह आप सबसे विनती है कि मंगल आरती के कार्यक्रम में आए। और उसके बाद गौर कथा सुबह 7:45 शुरू होगी और उसका दिन भर यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहेंगे। शाम को ठीक 6 बजे अभिषेक का कार्यक्रम है। अभिषेक में सभी भक्तों के लिए ऐसा अवसर है गौर पूर्णिमा के उत्सव कि आप सबको अभिषेक करने दिया जाएगा। लेकिन आप अब शाम के वक्त जब आते हैं तो वैष्णव पोशाक में आए तथा स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करके यहाँ पर आए तो आपको यहाँ पे अवसर दिया जाएगा कि गौर देवताओं का अभिषेक करने को दिया जाए। और गौर कथा के शाम को फिर गौर कथा होगी अभिषेक के बाद, उसके बाद कीर्तन तथा महाप्रसाद। तो सभी कार्यक्रम में आप उपस्थित रह के इसका लाभ उठाएं। जो भक्त चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए भोग लेकर आना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे से पहले यहाँ पर भोग लेकर आए और उस दिन शाम चंद्रमा के आने तक व्रत का भी पालन करना है। यह व्रत निर्जल व्रत होता है तो जो भक्तों के लिए संभव है कृपया तो प्रयास कीजिए इस व्रत का पालन करें। शनिवार 7 तारीख को इस्कॉन बेलगाम के प्रचार केंद्र बोकनूर का हरे कृष्ण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है वहां पर और इसमें पालकी उत्सव, अभिषेक, प्रवचन, नाट्य लीला, आरती व महाप्रसाद है। तो भक्तों से विनती है कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसका लाभ उठाएं। और यहां पर हार सेवा के लिए माता जी व प्रभु जी की आवश्यकता है तो बुधवार 4 तारीख को यहाँ पर सुबह 9 बजे सेवा के लिए उपस्थित रहें। ज्यादा जानकारी के लिए ब्रजमोहन प्रभु से आप संपर्क कर सकते हैं। आज एकादशी है, जैसा कि आप जानते हैं, इसका पारण समय कल सुबह 6:49 से 10:45 तक हुआ, 6:49 to 10:45। आने वाले रविवार को जो किचन सेवा है वो इस प्रकार से है, गिरिवरधारी सत्संग मंडल जिसके सेवक है कृष्णधन प्रभु, गोपी प्राणधन सत्संग मंडल जिसके सेवक है रामनाम प्रभु, हेरे प्रचार केंद्र जिसके सेवक है देवकी कुमार प्रभु, तथा गोपेश्वर महादेव सत्संग मंडल जिसके सेवक है नंदन नंदन दास। कृपया सभी सेवा प्रमुख तथा सदस्य समय पर उपस्थित रहकर किचन सेवा प्रारंभ करें। और हम आभारी हैं श्री मोहनलाल प्रजापत प्रभु के, जिन्होंने आज का रविवार का प्रसादम पुरस्कृत किया है। अगर वो यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया आगे आकर मंदिर की तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। मोहन प्रजापत प्रभु, क्या उनके परिवार से कोई और अन्य सदस्य उपस्थित है तो वो भी आगे आ सकते हैं। अगर वो यहाँ उपस्थित नहीं है तो हम उनका धन्यवाद देना चाहेंगे 3 बार जोर से हरि बोल कह के।
हरि बोल,
हरि बोल,
हरि बोल।
धन्यवाद। खड़े हो जाए।